समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। इरादा और कोशिश हमेशा पक्की होनी ही चाहिए, ये शायरी कहती है। खुद पर भरोसा रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, हौसला है तो ताकत है, इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता। तो इसी इंस्पिरेशन के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज आपके अपने प्रोग्राम आज सवेरे का। नमस्कार श्रोताओं, आज के अंक में हर दिन की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं ताजा तरीन खबरों के साथ वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के संक में मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और शगुन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
गुड मॉर्निंग जया, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, टू ऑल आवर लिसनर्स नमस्कार। वेल, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। सो लिसनर्स, यस, एवरी डे It starts a new page in your story and we should take the effort to make it an awesome one. So we are feeling very, very inspired and motivated and full of energy and we definitely want to also include our listeners in that and we want to share with our listeners the latest national and international news, also Metro City updates then. And we'll also be telling about you about personalities at the end of the program. And today it's, of course, it's 13th of November and there is so much to discuss, so much that we have prepared for you to share with you. Listeners, first, we are beginning with the headlines. Botswana will today hand over cheetahs for translocation to India under Project Cheetah. This was announced during the joint press briefing yesterday at the end of bilateral talks between President Draupadi Murmu and her Botswana counterpart Zuma Boko. Project Cheetah. Well, Project Cheetah, it is a unique initiative aimed at reintroducing cheetahs to India decades after their extinction. So, in September 2022, 8 cheetahs from Namibia, they were translocated to Kuno National Park. Then, followed by 12 cheetahs from South Africa in February 2023. The majority of these cheetahs have adapted well to their new environment, exhibiting natural behaviours such as hunting, territory establishment and mating, and notably also birthing cubs on Indian soil. Today, President Murmu is scheduled to interact with the members of the Indian community also in Botswana before concluding her visit. Now, Union Cabinet has approved a new credit guarantee scheme for exporters, offering 100% credit guarantee to exporters, including MSMEs. This scheme will provide up to 20,000 crore rupees in additional credit, strengthening liquidity and enhancing India's global competitiveness. The scheme, it aims to support India's $1 trillion export target and promote the vision of Atmanirbhar Bharat. In another decision, the Cabinet has revised royalty rates for key minerals. These key minerals, they include cesium, graphite, rubidium and zirconium. Union Minister Ashwini Vaishnav said, this will encourage auctioning of mineral blocks and boost the domestic production of critical minerals and create more employment opportunities in India.
अब बात बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना की, जो कल होनी है। वोटों की गिनती 38 जिलों के 46 मतगणना केंद्रों पर की जाएंगी। दो चरणों में हुए मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखी गई है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस बीच निर्वाचन आयोग ने बताया है कि इस महीने की 4 तारीख को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से मतदाताओं के बीच 37 करोड़ गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। ये इस चरण में शामिल होने वाले कुल 51 करोड़ मतदाताओं का 70% है। आयोग ने बताया है कि सबसे अधिक 10 करोड़ 80 लाख से अधिक फॉर्म उत्तर प्रदेश में वितरित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ 80 लाख से अधिक फॉर्म दिए गए हैं। दूसरे चरण में SIR 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जा रहा है। ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। अब श्रोताओं, हम आपको भारत की एक बड़ी उपलब्धि के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल भारत में पिछले एक दशक में तपेदिक के कुल मामलों में 21% की कमी आई है, जो वैश्विक औसत 12% से लगभग दोगुना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश में टीबी रोगियों की संख्या 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 से घटकर 2024 में प्रति लाख 187 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत के बेहतर केस फाइंडिंग दृष्टिकोण ने निदान और उपचार कवरेज में वृद्धि की है। इसने आगे कहा कि बहुऔषधि प्रतिरोधी टीबी के मामलों में कई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। तपेदिक के कारण होने वाली मृत्यु दर भी 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 28 से घटकर पिछले वर्ष प्रति लाख 21 हो गई है। सरकार देश से टीबी को खत्म करने के लिए टीबी मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और निक्षय पोषण योजना सहित कई पहलों को लागू कर रही है।
Tuberculosis. So the initiatives, they have really helped to eradicate almost, and we are into the beginning, maybe we can say in the phases of eradicating the disease, and this is such a wonderful achievement. Mm-hmm. Now, listeners, we'll tell you about Tribal Film Festival. So, as part of Janjatiya Gaurav Varsh celebrations, the 4-day National Tribal Film Festival and Carnival began in Manipur's capital, Imphal, yesterday. So, the festival is showcasing 23 tribal films from 9 states and celebrating India's diverse tribal heritage through cinema and through culture. Manipur's additional chief secretary Anurag Bajpayee said that the festival aims to promote and celebrate tribal cinema, culture, creative expression from across the country's tribal communities. The festival will be held until 15th of this month at the City Convention Center and the Manipur State Film Development Society Complex. This features films from Maharashtra, from Odisha, West Bengal, and also 6 northeastern states. They are being showcased in the event. Janjatiya Gaurav Varsh, It is a year-long commemoration of 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda. Now, Jaya, let's give our listeners the sports updates. First, I will tell about FIDE. In FIDE Chess World Cup, Grandmaster Arjun Erigesi, R. Pragyananda and Pintala Harikrishnan will play round 4 tie breaks in Goa today. The games, they will begin at 3 p.m. Earlier, Arjun played well, contested draw against Peter Liko of Hungary, while Pragyananda played draw against Russia's Daniil Dubov.
खेलों में अब बात तीरंदाजी की। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप ढाका में आयोजित किया गया है, जहां आज भारतीय तीरंदाज स्वर्ण पदक के लिए स्पर्धा करेंगे। भारत ने कल और 2 पदक मैच अपने नाम किए थे। एलिमिनेशन के अंतिम दिन अभिषेक वर्मा और दीपशिखा ने कजाकिस्तान को 156 के मुकाबले 153 से हराकर कंपाउंड मिक्स टीम के फाइनल में प्रवेश किया। रिकर्व में अंशिका कुमारी और यशदीप भोगे कल दक्षिण कोरिया के साथ कांस्य पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। और अब रुक करते हैं कुछ प्रमुख महानगरों का और जानते हैं वहां का हाल।
यस जया, वी आर बिगिनिंग विद चेन्नई। सो सी ग्रास बेड्स, दे प्रोवाइड इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग हैबिटेट्स फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोस्टल इरोजन्स। तमिलनाडु's कोस्ट इज होम टू अराउंड 13 सी ग्रास स्पीसीज। Researchers from a private university near Chennai, they have discovered a potential hidden seagrass habitat at Akkarai Beach that may help protect the coast. Professor Amit Kumar from the Center for Climate Change Studies, he said, the team collected samples and then identified 3 seagrass species usually found in estuarine backwaters. So they believe a patch of seagrass from the Muthukadu estuary may have been carried northward by coastal currents. Heavy rains and the removal of water hyacinth could have uprooted and then transported the plants. Currently south to north currents in Chennai, they may be bringing the seagrass back to shore. So they have found a potential hidden seagrass habitat there.
और अब समय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल से 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू होने जा रहा है। इस वर्ष मेले की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। 14 दिन तक चलने वाले इस मेले में बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य हैं, वहीं मेले का विशेष राज्य झारखंड है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भारतीय संवर्धन व्यापार संगठन के कार्यकारी निदेशक प्रेमजीत लाल ने बताया है कि इस वर्ष लगभग 3,500 प्रदर्शकों के मेले में भाग लेने की उम्मीद है। उन्होंने बताया है कि मेले के दौरान भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। दिल्ली से एक और खबर है हमारे पास, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत वायु प्रदूषण पर एक स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। इसमें शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में चेस्ट क्लिनिक स्थापित करने का आह्वान किया है। परामर्श में यह भी कहा गया है कि जिन महीनों में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक होता है, उस दौरान क्लिनिकों को रोजाना कम से कम 2 घंटे संचालित करने का सुझाव भी दिया गया है। दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, उसे देखते हुए मंत्रालय की ये बहुत अच्छी पहल मानी जा रही है।
Yes, Jaya. Let's head now to Bengaluru. Listeners, we are heading to Bengaluru now. Union Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Prahlad Joshi has written an open letter to Karnataka Chief Minister Siddaramaiah to protect the long-term interest of the sugarcane farmers and sugar industry. He asked the Chief Minister to announce additional state advisory price for sugarcane over and above the fair and remunerative price of 355 rupees per quintal at 10.25% of the yield announced by the central government. He further wrote that the central government had announced ethanol blending program so that the sugar factories are made financially strong.
अब चलते हैं भारत की औद्योगिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज नाशिक में 5,657 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। ये वर्ष 2026-27 में नाशिक और त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होने वाले सिंहस्त कुंभ मेले से पहले होगा। अधिकारियों ने बताया है कि मुख्यमंत्री पंचवटी क्षेत्र के रामकुंड में रामकाल पथ का भी निरीक्षण करेंगे और नाशिक जिला परिषद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार सहित कई मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक और खबर महाराष्ट्र से, जहां राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत महाराष्ट्र अनुसंधान विकास और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि अमृत ने विश्व स्तरीय कीर्तिमान स्थापित किया है। संस्था की पहल अमृत दुर्गोत्सव 2025 का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस पहल के माध्यम से मानव निर्मित किला प्रतिकृतियों का सबसे बड़ा डिजिटल फोटो एल्बम बनाकर नई पीढ़ी को ऐतिहासिक धरोहर से जोड़ने का प्रयास किया गया। गिनीज प्रमाण पत्र औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे और अमृत के प्रबंध निदेशक विजय जोशी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने संस्थान को बधाई दी और कहा कि इस पहल को युवा पीढ़ी को महाराष्ट्र की समृद्ध किला विरासत से जोड़ने का एक उल्लेखनीय प्रयास रहा है। वहीं संस्था ने लोगों को आमंत्रित किया है कि वे 12 यूनेस्को मान्यता प्राप्त किलों की प्रतिकृतियों के साथ सेल्फी क्लिक कर उन्हें आधिकारिक उत्सव की वेबसाइट पर अपलोड करें। इस बीच महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने मरीजों से अधिक किराया वसूलने से रोकने के लिए सभी एम्बुलेंसों पर किराया चार्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा एम्बुलेंस किरायों को विनियमित करने और मरीजों के परिजनों का आर्थिक शोषण बंद करने की मांग के बाद लिया है। हालांकि मीटर लगाना फिलहाल तकनीकी रूप से संभव नहीं है, जो कि मांग की गई थी। फिर भी सरकार ने सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे राज्य भर में एम्बुलेंसों और अस्पतालों के प्रवेश द्वारों के पास किराया चार्ट सुनिश्चित करें लगाना।
We will now be focusing on Hyderabad. So in Telangana, all arrangements are in place for tomorrow's counting of votes in Jubilee Hills Assembly constituency. The final voter turnout in the by-poll was recorded at 48.49%. Over 1,94,000 voters in the Jubilee Hills Assembly constituency exercised their franchise. Counting of votes will begin at 8 a.m. tomorrow at Sri Kotla Vijaya Bhaskar Reddy Stadium in Yusufgoda. District Electoral Officer R.V. Karnan informed that elaborate arrangements they have been made, they are in place for the counting day. Police will deploy additional personnel in and around the stadium to prevent any untoward incidents. A total 58 candidates they were in fray, including those from major political parties.
अब कोलकाता समाचार की बात करते हैं. पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में सुनवाई कल कलकत्ता उच्च न्यायालय में पूरी हो गई है. न्यायमूर्ति तपोव्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति हिताव्रत कुमार मित्रा की खंडपीठ ने कल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान प्राथमिक शिक्षा परिषद ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता 2016 की भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के सबूत साबित करने में विफल रहे हैं. इससे पहले न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने फैसले में 32,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी थी. बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को पलट दिया. मामला सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया, जिसने इसे अंतिम निर्णय के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया. तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार. श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर जया और शगुन के साथ. कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं कि मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है. सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है. न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा. इस बीच राजधानी में प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है. मुंबई में आज आसमान साफ रहने की संभावना है. शहर का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. और मुंबई की तरह सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में भी आज आसमान साफ रहेगा. शहर का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शगुन से.
Jay, again, I will begin with Chennai, where it is expected to have generally cloudy sky and there is a possibility of moderate rain. The minimum temperature was 26 degrees Celsius and maximum will be around 32 degrees. Bengaluru, again, expected to have partly cloudy sky. Minimum temperature was 18 degrees Celsius. Maximum will be around 28 degrees. Hyderabad, if I talk about Hyderabad, is also expected to have mainly clear sky, becoming partly cloudy towards evening or at night. The temperature, minimum temperature, will be around 16 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees Celsius.
और श्रोताओं, अब वक्त आ गया है अतीत के पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की. आज 13 नवंबर 2025 है और आज ही के दिन 1898 में काली पूजा के अवसर पर रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक पत्नी पूज्य माता श्री शारदा देवी ने कोलकाता के बाग बाजार में निवेदिता के विद्यालय का उद्घाटन किया था. शगुन, ये विद्यालय स्पेशली लड़कियों के लिए था और ये एक ऐतिहासिक घटना इसलिए थी क्योंकि इसने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
That's great to note. And Jaya, in 1851, the first permanent telegraph connection between London and Paris was officially established by the Submarine Telegraph Company. So telegraph device that transmits information over a distance and using electrical signals, they are basically sent through wires or even radio waves.
अब बात करते हैं 1971 की, जहां आज ही के दिन अमरीकी अंतरिक्ष संस्थान नासा द्वारा भेजा गया अंतरिक्ष यान मैरिनर 9 ने मंगल ग्रह पर चक्कर लगाया था. यह पहला मौका था जब पृथ्वी से भेजे गए किसी यान ने किसी दूसरे ग्रह का चक्कर लगाया था. करीब एक महीने के बाद वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की साफ तस्वीरें दिखाई दी थी.
And if I talk about 1907, French bicycle maker Paul Cornu flew the first twin rotor helicopter lifting 5 feet off the ground for just 20 seconds, marking the first free flight of a helicopter with a pilot. In 1946, scientist Winston Schaffer produced the first artificial snow by dropping dry ice pellets. Artificial snow by dropping dry ice pellets from an airplane into a super cool cloud over Mount Greylock, Massachusetts.
अब बात 1975 की, जहां आज के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एशिया के चेचक मुक्त होने की घोषणा की थी। यह मानव इतिहास में सबसे बड़ी स्वास्थ्य उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से मंत्रालय ने तबेतिक के बारे में बताया कि उसकी दरें कम हुई है, तो 1975 में आज ही के दिन एशिया को चेचक से मुक्त होने की घोषणा की गई थी। चेचक एक बहुत ही घातक संक्रामक बीमारी थी जिसने सदियों तक लाखों लोगों की जान ली है। हालांकि इसके बाद सफल टीकाकरण हुआ जिससे ये मामले कम होते गए और अब न के बराबर है।
राइट, एंड If I talk about the year 2014, well, Rohit Sharma set a new world ODI record of 264 runs off 173 balls against Sri Lanka at Eden Gardens in Kolkata.
अब बात थोड़ा पहले हम चलते हैं वर्ष 2007 में, जहां ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड में भारतीय फिल्म गांधी माई फादर को सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार उनकी फिल्म की लेखनी के लिए मिला था।
And yeah, this is about last year, in 2024, world's largest coral, larger than a blue whale and 300 years old, was found, they discovered it, off the Solomon Islands in the southwest Pacific Ocean.
और अब समय है उन प्रमुख व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
जी, beginning with?
आज पुण्यतिथि है फिल्म निर्माता दाटला वेंकट सूर्य नारायण राजू की, जो तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए डीवीएस राजू के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने तेलुगु फिल्म उद्योग को चेन्नई से हैदराबाद स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें रघुपति वेंकैया पुरस्कार, भीष्म पुरस्कार और 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डीवीएस राजू का जन्म 13 दिसंबर 1928 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होंने 1950 में डीवीएस प्रोडक्शंस बैनर की स्थापना की थी। अगर हम इनके कुछ लोकप्रिय फिल्मों की बात करें तो इसमें पिदुगु, रामुडू, चिन्ना नाती, स्नेहथुल आदि थी और कुछ प्रसिद्ध फिल्में जैसे जीवित नौका, जीवन ज्योति आदि थी।
जी, नाउ वी विल टेल आवर लिसनर्स अबाउट डोनाल्ड मिल्स। सो ही वाज एसोसिएटेड विद द बैंड मिल्स ब्रदर्स। His brothers, sometimes they build the four Mill brothers and originally known as four boys and a guitar because there was one guitar in this group, Jaya. So the vocal, jazz and traditional pop vocal quartet, they made more than 2,000 recordings that sold more than 50 million copies and garnered at least 36 gold records. With dollies that are real. When I come home at night, she will be waiting. She'll be the truest doll in all this world. I'd rather have a paper doll. So, the Mills brothers, the artists to have their own show, the first black artists to have their own show on national network radio. They made appearances in film as well, and they were the first ones to have number one hit on the Billboard singles chart. This the song that you are listening, this made them number one artist, Paper Doll. They were inducted into the Vocal Group Hall of Fame also in 1998.
और आज ही पुण्यतिथि है गुलाम याजदानी की, जो पुरातत्व वैज्ञानिक थे। हैदराबाद राज्य में वे एक विशेष विभाग के संस्थापक थे। सन 1959 में गुलाम याजदानी को विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
लिसनर्स, नाउ वी विल टेल यू अबाउट पी सुशीला। Well, playback singer associated with the South cinema for over 6 decades. She has been recognized by both Guinness Book of World Records and the Asia Book of Records for singing most number of songs in Indian languages. She is also the recipient of 5 National Film Awards for Best Female Playback Singer and numerous state awards as well. So widely acclaimed as a singer, she was born into a music-loving family and she was nurtured and trained in Indian classical music from quite a young age. Ooh. well. She is considered as one of the rich voiced singers which we can hear, and her syllables, they were clear and precise in any of the languages which she sang, whichever language which she chose to sang. They include Telugu, Tamil, Kannada, Hindi, Bengali and other languages as well. So she was born into a music loving family, as I was telling our listeners about that, and she's also recipient of Padma Bhushan as well. So at the 16th National Film Awards, she won one of the National Film Awards. This make her the first recipient of a National Film Award in the category of playback singing. Jaya
और श्रोताओं, हम आज याद कर रहे हैं शेरी पंजाब महाराजा रणजीत सिंह को, जिनका आज ही के दिन 1780 में जन्म हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीवित रहते हुए अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी नहीं भटकने दिया। 12 अप्रैल सन 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की थी। गुरु नानक के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी संपन्न कराई थी। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और 1802 में अमृतसर की ओर रुख किया। महाराजा रणजीत सिंह पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत प्रोत्साहन दिया। उन्होंने पंजाब में कानून और व्यवस्था कायम की और कभी भी किसी को सजाए मौत नहीं दी। और श्रोताओं, आज ही जयंती है प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवक, न्यायाधीश, विधि विशारद और संविधान शास्त्रज्ञ मुकुंद रामाराव जयकर की। उनका व्यक्तित्व बहुत ही व्यापक था। मुकुंद जयकर के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी कार्यों का मूल्यांकन किए बिना भारत का आधुनिक इतिहास अधूरा रहेगा। इस दृष्टि से उनके भाषणों, पत्रों और लेखों का अध्ययन आवश्यक है। सन 1917 के बाद भारत का ऐसा कोई आंदोलन नहीं था जिससे मुकुंद रामा राव जयकर का संबंध किसी न किसी रूप में न रहा हो। इन पर सभी का समान रूप से विश्वास होने के कारण मध्यस्थ के रूप में उनकी योग्यता सराहनीय थी। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड से संबंधित उनकी रिपोर्ट इतिहास में अमर है।
Well, yes, Mukund Ramrao Jayakar. Well, he studied law in London and Bombay University till 1905, after which he worked for the Bombay Chronicle, the newspaper started in 1910 by a politician and lawyer Firoz Shah Mehta. So from 1923 and 1925, he also became a member of the Bombay Legislative Council, which was set up in 1861 to facilitate the assistance of jurors and experts. Jayakar's published words, they include Social Reform and Social Service, Studies in Vedanta and an autobiography, The Story of My Life.
आज ही जयंती है प्रगतिशील कवि के रूप में हिंदी साहित्य के शिखर पुरुषों में एक गजानन माधव मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध कहानीकार भी थे और समीक्षक भी। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है। प्रख्यात साहित्यकार शमशेर बहादुर सिंह ने कहा था कि मुक्तिबोध हिंदी संसार की एक घटना बन गए हैं, कुछ ऐसी घटना जिसकी ओर से आंखें मूंद लेना असंभव था। उनका एकनिष्ठ संघर्ष, उनकी अटूट सच्चाई, उनका पूरा जीवन, सभी एक साथ हमारी भावनाओं के केंद्रीय मंच पर सामने आए और सभी ने उनके कवि होने को नई दृष्टि से देखा। मुक्तिबोध हिंदी के अति विशिष्ट रचनाकार है। उन्हें उम्र जरूर कम मिली, पर कविता, कहानी और आलोचना में उन्होंने युग बदल देने वाला काम किया है। आज ही जयंती है कहानी सम्राट प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार और गद्य गीत लेखक राय कृष्णदास की। इन्होंने भारत कला भवन की स्थापना की थी, जिसे वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय को दे दिया गया। आज भारत कला भवन शोधार्थियों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है।
The listeners, we are telling you about Rai Krishnadas, author and scholar, and also awarded the Padma Bhushan in 1980.
और 90 के दशक में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शामिल रही जूही चावला का भी आज जन्मदिन है।
साहब, ये तीनों बहुत टेंशन वामा है, इनका नौकरी दे दो।
है?
इनके मर्दों की नौकरी चली गई है,
है?
घर माँ कड़की है,
है?
बच्चों का फीस देना है,
अच्छा?
घर का किराया देना है,
है?
एक एक दिन इन पर पहाड़ जैसा गुजर रहा है साहब।
ओह माय गॉड,
ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया के फिल्म से है। जूही की फिल्मों में उनकी मुस्कान और चुलबुली अदाओं ने दर्शकों को काफी प्रभावित किया। डर, गुलाबी गैंग, कयामत से कयामत, हम है राही, प्यार के यस बॉस, अंदाज और बोल राधा बोल जैसी हिट फिल्में दी है उन्होंने। साल 1984 में मिस इंडिया चुनी गई, उन्हें पहचान मिली सुपरहिट फिल्म कयामत से कयामत तक से।
यस, फ्रॉम इनोसेंस टू एलिगेंस शी मेड द 90s गोल्डन विद अ यूथफुल स्पार्क, प्लेफुल बैंटर एंड जेन्युइन वार्मथ, मेकिंग हर वेल वन ऑफ द आइकॉनिक परफॉर्मर्स इन बॉलीवुड।
सुनते हैं जूही की आवाज में एक गाना। ये गाना उन्होंने एक रियलिटी शो में गाया था। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और शगुन को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड।
नमस्कार।